लास्ट संडे किसी साहब ने मुझसे माह रजब के रोजों के बारे में कुछ पूछा था, क्योंकि इस वक्त हम माह रजब में हैं और हम में से हर आदमी की ख्वाहिश होगी कि वो माह रजब की बरकात से फायदा उठा ले। तो इसके बारे में कुछ गुफ्तगु करना शायद बेमहल नहीं होगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब से मैंने जमीन और आसमान तख्लीक किए हैं, 12 महीने महफूज कर दिए, मुकर्रर कर दिए, आप जिन अल्फाज में कहने, रोजे अजल ही से, इस कायनात की तखलीक के रोजे अजल से वक्त को 12 महीनों पर रब ने तकसीम किया है। यही वजह है कि दुनिया के जितने मशहूर कैलेंडर्स हैं उनको अगर हम देखें तो उससे एक चीज वाजे होती है, सभी मशहूर कैलेंडर्स में जो बैनुल अक्वामी सतह पर तस्लीम किए गए हैं, मशहूर हुए हैं, वो उन सब में महीने 12 ही हैं, चाहे उनको किसी नाम से पुकारा है। अल्लाह ताला ने इन 12 महीनों में 4 महीनों को हुर्मत वाला करार दिया और वो 4 महीने रजब, ज़िलक़ाद, ज़िलहज और मुहर्रम हैं। 3 महीने तो एक तसलसल में आते हैं, ज़िलक़ाद, ज़िलहज और मुहर्रम, लेकिन रजब इन सबसे अलहदा है, इसके दरमियान वक्फा है 1 महीने का। रजब लफ्ज दरअसल तरजीबो से निकला है। तरजीबो अरबी में ताजीम करने को कहते हैं। इस्लाम के जहूर से पहले भी कुफार में भी ये महीना ताजीम वाला कहलाता था। इस महीने को बहुत से मुख्तलिफ नामों से भी पुकारा गया है, शाहर साबक के नाम से पुकारा गया इसे, शाहर असब के नाम से पुकारा गया, शाहर असम के नाम से पुकारा गया, मुख्तलिफ नामों से इसे पुकारा जाता है। लेकिन अजीब बात यह है कि इसका कोई सा भी अगर नाम लिया जाए वो ताजीम ही से मुताल्लिक है। ये रहमतों का महीना है, इसे बहरा महीना भी कहते हैं कि ये सुनता नहीं। इससे मुराद ये नहीं कि बाकी 11 महीनों के कान हैं या उनमें सुनने की कोई सलाहियत है, ऐसी बात नहीं। असल में इस महीने की बरकात में एक बरकत ये भी है कि रब ताला इस महीने की गवाही को साकित कर देता है इंसान पर। जब कोई शख्स अपनी जान पर जुल्म करता है तो ये महीना उसे सुनता नहीं, देखता नहीं। तो रोजे हिसाब जब हमारे मुख्तलिफ आज़ा, मुख्तलिफ चीजें गवाही देंगी कि इस शख्स ने ये जुल्म हमारे जरिए से किया था अपनी जान पर, तो ये महीना गवाही नहीं दे सकेगा, क्योंकि रब ताला ने अपनी रहमत के सदके इस महीने को बहरा कर दिया। उस मुराद ये है, इसकी गवाही साकित कर दी रब ताला ने। इसमें एक जबरदस्त फजीलत यह है, वैसे तो इसके 15 रोजों की, एक एक रोजे की अलग-अलग फजीलत बयान की है अहले इल्म ने। एक रोजा जिसने रखा उसे 30 साल के रोजों के बराबर सवाब अता कर दिया गया। एक फजीलत यह बयान की गई कि जब कोई शख्स रजब का एक रोजा रखता है तो उस पर जहन्नम का एक दरवाजा बंद कर दिया जाता, दो रखता है तो दो दरवाजे बंद हो जाते हैं, हत्ता के 7 दरवाजे हैं जहन्नम के, 7 रोजों में 7वां आखिर दरवाजा भी उस पर बंद कर दिया जाता। मकसद ये है कि जो शख्स माह रजब के 7 रोजे रखे वो जहन्नम में दाखिल नहीं होगा, मकसद इससे ये है। इसी तरह एक फजीलत ये बयान की गई कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, तो जो शख्स एक रोजा रखता है रजब का अल्लाह की खुशनुदी की खातिर, सवाब के हसूल की नियत से, उस पर जन्नत का एक दरवाजा खोल दिया जाता है, दूसरा रखा तो जन्नत का दूसरा दरवाजा उस पर खुल गया, ताकि 8वें रोजे पर जाके जन्नत के 8 दरवाजे उस पर वा कर दिए गए। मुराद ये है कि जिस शख्स ने रजब के 8 रोजे रखे वो जन्नत में जाएगा। लेकिन मैं जिस फजीलत का जिक्र कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कि वह आपके लिए क्या अहमियत रखेगी या किसी और के लिए कोई क्या अहमियत रखेगी वो बात, लेकिन वो फजीलत मुझे बहुत भाई। पहले रोजे की अजर है, दूसरे रोजे का एक अजर है, तीसरे रोजे का अजर यह है कि जिस शख्स ने रजब का 3रा रोजा भी रखा उसे अल्लाह की दोस्ती और उसका कुर्ब हासिल हो गया। तो ये मेरे नजदीक की फजीलत मेरे दिल को बहुत पसंद है। वो और बात है कि मैं तो वैसे ही फासिक व फाजर आदमी हूं, इबादत और नेकी के करीब से नहीं गुजरा कभी। 3रा रोजा रखना रजब की बड़ी बात है, मैं तो एक भी रोजा नहीं रख सकता, बस देख के खुश हो जाता हूं कि 3रे रोजे का अजर ये है कि इंसान को अल्लाह की दोस्ती और उसका कुर्ब हासिल हो जाता। इसमें इबादात का अजर बड़ा है, तो अगर हम उस अजर पर ना भी नजर रखें, मिलना तो भारत है, क्योंकि रब तो किसी की नेकी, किसी की मेहनत और कर्ज अपने जिम्मे नहीं रखता, उसका अजर अता फरमा देता है। तो मैं तो इस नुक्ते नजर से उस 3रे रोजे की फजीलत का जिक्र कर रहा था कि अगर हम रोजे रखे हैं रजब के, तो बाकी जो भी अजर है उसका अल्लाह ताला की तरफ से जो उसका इनाम दिया जाना है वो तो मिल ही जाएगा, वो रब तो नहीं रखेगा अपने जिम्मे कोई कर्ज। लेकिन अगर रब की दोस्ती या उसका कुर्ब हासिल हो गया, तो मेरे ख्याल में ये सब सवाब और सब अजर पीछे रह जाते हैं। यही एक इनाम कि रब की दोस्ती और उसका कुर्ब हासिल हो जाए, वो सब पर ले जाता है। ये मेरा जाती ख्याल है उसमें, क्योंकि अगर रब ताला की दोस्ती और उसका कुर्ब हासिल हो गया हमें, तो फिर बाकी कुछ पीछे रहता नहीं, सभी कुछ हासिल हो जाता है। मैंने पहले भी कई मौकों पर अर्ज किया, अब भी एक बार फिर अर्ज कर देता हूं कि रब ताला बहुत हया वाला है, बहुत वजादार है, बेपना वजादारी है रब ताला में। वो तो लोगों को अपनी रहमत के सदके सिर्फ इसलिए माफ कर देता है कि वो उसके दोस्त के दोस्त हैं। तो वो अपने दोस्त के साथ क्या सलूक करेगा, इससे अंदाजा कर लीजिए कि सिर्फ दोस्त का रेफरेंस अगर हो तो वो उसकी वजादारी और उसकी हया ऐसी है कि उस शख्स को ही माफ कर देता, उस पर ही रहमत नाजिल कर देता सिर्फ ये देख के कि वो दोस्त का दोस्त है। तो खुद अपने दोस्त के साथ क्या मामला करेगा रोजे कयामत, वो इससे अंदाजा हो जाता है हमें। ये भी हो सकता है कि मैं इस पहलू पर जो ज्यादा जोर देता हूं इसमें शायद मेरा लाशऊर बोलता है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह इल्म है कि मेरे नामा अमाल पर सवाए गुनाहों की स्याही की और कुछ नहीं मिला। वहां तहरीर तो नजर आती नहीं, इतनी स्याही है मेरे गुनाहों की। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने स्याह रंग का ब्रश फेर दिया मेरे नामा अमाल पर, और नेकी का हिस्सा उतना ही बिल्कुल साफ है, उस पर कुछ तहरीर ही नहीं आज तक हो सका कि नेकी हुई नहीं। तो मैं तो यकीनी तौर पर ऐसे रास्ते ढूंढूंगा जिससे मेरी माफी हो जाए। तो इसलिए मुझे रजब के तीसरे रोजे की यह फजीलत बहुत अच्छी लगी कि अगर मेरे रब की दोस्ती और उसका कुर्ब मुझे हासिल हो जाए तो शायद मैं इसी वास्ते से बख्श दिया जाऊं, माफ कर दिया जाऊं। इस महीने में कोशिश कीजिए कि नफली इबादात कर लें। फर्ज इबादात तो हम पे लाजिम है कि उसको सारी उम्र बाकायदगी और पाबंदी के साथ किया जाए, लेकिन इस महीने में नफली इबादात कर लीजिए। और रब ताला की बुजुर्गी का जिक्र, उसकी वहदानियत का जिक्र, उसकी वहदानियत का इकरार जितना ज्यादा कर सके कर लीजिए। रब ताला की रहीम करीम होने की सिफत से, उसकी रहमत से पूरी उम्मीद और तवक्को है कि रब उस जिक्र के सदके आप पर अपनी रहमत नाजिल फरमाएगा, आप पे अपना करम कर देगा, आप पे अपना फजल कर देगा। और जिस शख्स पे रब ताला का करम हो गया, उसका फजल हो गया, फिर उसे किसी चीज की हाजत रहती नहीं कि रब उस पे इतना मेहरबान हो जाता है कि वो उस मकाम पर ले जाता है अपने बंदे को जहां वो कहता है कि मेरे लिए मेरा रब ही काफी है। ये चार सवाल हैं, एक का तो मैं जवाब बाद में अर्ज करता हूं। ये अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुर्ब और मोहब्बत के हसूल का बेहतरीन तरीका क्या है, आपका आपके घर में दो मुलाजिम हैं, एक मुलाजिम काम अच्छा करता है, जॉब शुरू करने से पहले वो आपके साथ अपनी तनख्वाह और अपनी नौकरी की टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत वाज़े तरीके से आपसे सेटल करता है, और पूरा महीना मेहनत के साथ काम करता है। आपको उसके काम पे शिकायत नहीं है कोई, खुश हैं आप उसकी परफॉर्मेंस से। उधर अगले महीने की रकम आई और सुबह उसने 9 बजे आके आपको सलाम किया कि साहब मेरी तनख्वाह महीना पूरा हो गया। जो ही उसकी छुट्टियां ड्यू हुई कि साहब आज मेरी छुट्टियां ड्यू हैं, सुबह से मैं चला जाऊंगा और फिर इतने रोज के बाद वापस आऊंगा। जो ही उसके लिबास को देने का टाइम आया, वो खड़ा हो गया कि साहब आज आपने मुझे 2 यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड करनी है नहीं, क्योंकि एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आज आपको लिबास ये देना। आपसे वो कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा, वही कुछ मांग रहा है जो आपका और उसका तयशुदा है। एक और मुलाजिम है जो काम अपनी मर्जी से करता है, आपने 3 आवाजें दी तो आ गया और आखिर जी पानी पिलाओ के सब, मैं अभी ये काम खत्म कर लूं पानी पिलाता हूं। जो काम बोला कि जी मैं ये कर लूं तो फिर मैं आपका काम करता हूं, हर दूसरे दिन डिमांड के साथ खड़ा है कि साहब ये दे दीजिए वो दे दीजिए। और एक और मुलाजिम है बिल्कुल मुख्तलिफ, जब आपने उसे मुलाजिम रखा तो उसने कहा कि जो जी चाहे तनख्वाह दे दीजिएगा। आपने कहा कोई सर्वेंट क्वार्टर तो इंडिपेंडेंट नहीं है तुम्हारे लिए, कहीं शेयर करना पड़ेगा। कि सर डजंट मैटर, शेयर करने की अभी कोई गुंजाइश नहीं, तो मैं ये बरामदे में किसी एक कोने में बिस्तर डाल दूंगा। आपने खाना दे दिया, उसने खा लिया, आपने नहीं दिया तो भी खुश फिर रहा, आप पर जाहिर ही नहीं होने देता कि आप भूल गए उसको खाना देना। कपड़े हैं धो के साफ सुथरे रोजाना पहनता है, आप नए कपड़े देना भूल गए, वो खुद ही उनको सीता रहता है, पैवन लगाता रहता है और धो के पहनता रहता है, आपसे जिक्र ही नहीं करता कि आपने उसे कपड़े नहीं दिए। साल साल से आपके यहां मुलाजमत कर रहा है, कभी आता ही नहीं कहने कि मुझे छुट्टी घर जाना है या मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। आप जो काम कहते हैं, जी सर अभी आया, जी सर हो गया, इसके अलावा तीसरा जुमला ही नहीं, उसको नहीं आता। आप 1 बजे घंटी बजाते हैं, उसके क्वार्टर में घंटी बजती है, आंखें मलता हुआ नहीं आता, बड़ा अलर्ट होके आता, हालांकि आपको मालूम है सो रहा था कि तुम सो रहे थे। नहीं सर, बिल्कुल फारग था सर, बैठा था, ये काम कर दो। जी सर अभी हुआ, ये कर रहा है वो। अब आप मुझे बताइए कि इन तीनों मुलाजमीन में से कौन सा मुलाजिम आपके दिल के करीब होगा? तो अगर कोई शख्स इस तीसरे मुलाजिम की तरह अल्लाह की बंदगी कर रहा है, जुबान पर कोई गिला शिकवा ही नहीं है, जो मिल गया उसी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया, जो नहीं मिला उसका तذکرہ ही कहीं नहीं है, अल्लाह से किसी दुनियावी चीज का तकाजा ही नहीं करता, कोई दुआ ही नहीं उससे करता दुनियावी चीजों की, कहता है तो सिर्फ ये कहता है कि या अल्लाह तो मुझे अपने मोहब्बत करने वालों में शामिल कर ले, या अल्लाह मुझे कयामत के रोज उन लोगों में से उठा जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, यही कहता है अल्लाह से, यही मांगता कि या अल्लाह तू मुझे अपने मोहब्बत करने वालों में शामिल कर ले। तो क्या ये शख्स अल्लाह के करीब नहीं होगा? और यही रवैया उसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक से है, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतें इस पर नाजिल नहीं होती होंगी? तो यही कुर्ब हासिल करने का तरीका है कि गिले शिकवों से जुबान बंद कर लीजिए। अब वो और बात है कि मैं तो यही करता हूं कि एक आसान तरीका ढूंढा है, मैं अपने तमाम इल्जामात शैतान के जिम्मे दे देता हूं, तो अभी शैतानी को मैं इल्जाम दे दूंगा, मैं तो अपने जिम्मे नहीं लेता कोई कसूर, सब शैतान का कसूर है कि शैतान मुझे बहका देता है। गर्मी है, धूप में खड़ा होकर अगर कभी मुझे अपने दफ्तरी मामलात को देखना पड़ जाए, कुछ बस का हो जाता है कि कहीं विजिट पर आदमी गया तो गर्मी में धूप में खड़ा है, तो मैं सर से अपना फेल्ट हैट उतार के तो उसी को पंखा बना लूंगा। आज गर्मी बहुत है। अब ये जब मैंने कहा गर्मी बहुत है तो मेरे नजदीक तो मैंने एक सरसरी सी बात की है, मौसम का जिक्र किया है, लेकिन अहले इल्म के नजदीक ये रब का शिकवा है। मैं अपने मुर्शिद साहब से जूते खा चुका हुआ हूं इस जुमले पर। ऑफिस से मैं आया था तो बड़े शाह साहब के कमरे में, हुजरे में गर्मी बहुत थी, हवस था, तो मेरी जुबान से ये जुमला निकल गया कि हजूर आज गर्मी बहुत है। तो बेपनाह किस्म की डांट पड़ गई, बड़ी शदीद। तुमको यह हक किसने दिया कि तुम अपने आका पर उंगली उठाओ, अपने मालिक पर उंगली उठा सको? ये रब का काम है, उसकी मर्जी है, गर्मी बढ़ा दे या घटा दे, गर्मी कब शुरू करता है ये उसकी मर्जी है, उसका मजाज है। जब चाहे वो गर्मी बढ़ा दे दुनिया में, और जब चाहे सर्दी बढ़ा दे, जब चाहे गर्मी का मौसम शुरू करे, सर्दी का मौसम शुरू करे। तुम्हारा क्या काम है कि तुम अपने मालिक पर उंगली उठाओ? ये तो बड़ी नर्म अल्फाज मैंने अर्ज किए आपसे, लेकिन जिस किस्म के जूते खाए थे उसका नतीजा ये निकला कि आज शायद 35 साल के बाद भी जुबान पे कभी आएगा नहीं भूले से भी। इसलिए नहीं कि मैं नेक हो गया, ऐसी गलती अभी तक नहीं हुई, नेकी के करीब नहीं जाता। उस डांट का डर और खौफ आज तक दिल पर है कि कहीं फिर डांट ना पड़ जाए। तो ये गिला है, शिकवा है ये कहना कि आज गर्मी बहुत है। अहले इल्म तो इस बारीकी को जाते हैं, हम फिक्रमंद रहते हैं मामूली मामूली बातों से। एक तरफ हम ये कहते हैं कि रब को अपनी मखलूक का बहुत ख्याल है, बड़ा मेहरबान है, मोहब्बत करने वाला है, मां से 70 गुना ज्यादा मेहरबान है, लेकिन परेशान रहते हैं हम कि ये काम और वो काम। क्या रब को अपनी मखलूक का ख्याल नहीं है? हम जो बोलाए बोलाए फिरते हैं और जहां पता चलता है कि ये साहब दुआ करते हैं, इनकी दुआ कबूल होती है, वहां अपने दुनियावी मसाइल लेके पहुंचते हैं। आप किसी ऐसी जगह बैठ जाए जहां दुआ होती है तो वहां हम सभी, और शायद मैं सब में पेश पेश हूंगा जाने वालों में, अपने दुनियावी मसाइल लेके गया हूं। और मजा ये है कि जब हम जॉब करते हैं, खा वो पब्लिक सेक्टर जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर, तो एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसे हम साइन करके देते हैं और हम उसे बकायम होश और हवास साइन करते हैं और बखुशी साइन करते हैं, एट आर फ्री विल। उसमें क्लियरली लिखा होता है, अगर वो गवर्नमेंट की जॉब का है तो उसमें क्लियरली लिखा है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को हक है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री मुझे विद इन पाकिस्तान कहीं भी या आउटसाइड पाकिस्तान मुझे ट्रांसफर कर दे, और मैं साइन किया है, यह हक मैं दे चुका। लेकिन अगर कहीं गवर्नमेंट ने मुझे लाहौर से गुजरांवाला ट्रांसफर कर दिया तो मैं 50 जगहों पर फिरूंगा, जाके दुआ कराऊंगा कि मेरी ये ट्रांसफर कैंसिल हो जाए। हम तो खुद अपने किए हुए मुआहदे को पूरी तरह से एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो जब हम ऐसी हरकतें करते हैं तो वो इनडायरेक्टली हम रब ताला की ना शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं, उसकी तरफ से मिलने वाली हर चीज को बड़ी खुशी से और शुक्रगुजारी के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। तो कुर्ब इलाही के लिए हमें उस तीसरी किस्म के मुलाजिम का रवैया रखना होगा और उसकी दोस्ती और कुर्ब खुद ब खुद हासिल हो जाएगा। एक और सवाल है, और ये बहुत लोगों ने ये सवाल मुझसे किया, लेकिन मैं हमेशा परेशान होता हूँ कि इसका जवाब क्या दिया जाए। सवाल ये है कि हमारी बड़ी आरजू है कि आप बड़े शाह साहब के बारे में कुछ कहिए जो हमारे लिए बायस रहनुमाई हो। मेरी नालायकी कहिए कि अपने मुर्शद साहब के साथ तीन तरह का ताल्लुक एस्टेब्लिश होने के बावजूद मैं कुछ ज्यादा जान ना सका अपने मुर्शद साहब के बारे में। उनका बड़ापन था और उनकी बड़ाई थी, उनका जर्फ था ये कि उन्होंने मुझे बड़ी गहराई से जाना, मेरी तमाम खामियां, मेरे तमाम स्याह करतूत सब पर नजर थी। कभी कभार कहीं गुफ्तगू में इजहार हो भी जाता था उसका, लेकिन बड़े शाह साहब के जर्फ का क्या कहना कि मेरी तमाम तर कमजोरियों के बावजूद मुझ पर मेहरबानियां ऐसी थी। हैरत होती है कि कितने बड़े दिल के आदमी थे, कितना बड़ा हौसला था उनका। वो तीन ताल्लुक इस तरह से बन गए उनके साथ मेरे, एक दिन बैठे बिठाए लोगों से कहने लगे कि लोगों आज मैंने अपनी जेब सरफराज को दे दी, सबने मुझे मुबारकबाद दी। तो एक ताल्लुक तो मेरा उनसे ही हो गया कि आपने अपनी जेब मुझे अता फरमा दी थी। फिर एक दिन मालूम नहीं क्या बात हुई, तो किसी ने कुछ जिक्र किया या कुछ हुआ, तो उस पर फरमाया कि सरफराज मेरा बेटा है। तो एक ताल्लुक ये एस्टेब्लिश हो गया, फिर दूसरा था ये, और तीसरा ताल्लुक आपके पर्दा फरमाने से कुछ अर्सा पहले का है। तो आपने सबको मुखातिब करके कहा कि मेरे मुर्शिद साहब का एक ही खलीफा था और मेरा भी एक ही खलीफा होगा, और वह ये है। तो ये तीन ताल्लुक एस्टेब्लिश हुए अपने मुर्शिद साहब के साथ, लेकिन मेरी नालायकी इस कदर थी कि मैं बड़े शाह साहब के बारे में कुछ जान ही ना सका। मैंने सवाल ही नहीं पूछा कभी बड़े शाह साहब से, वहां खामोश बैठे रहते थे, कुछ खुद फरमा दें अपनी जुबान से तो ठीक है, लेकिन उनसे कभी पूछा नहीं। एक दिन फरमाया कि मैं अंबाले में पैदा हुआ, कोई किस्सा सुना रहे थे, उस जन्म में जिक्र आया, तो फरमाया कि मैं अंबाला में पैदा हुआ था। तो यूं पता लग गया कि आपका बुनियादी तौर पे ताल्लुक अंबाले से था। इसी तरह एक गुजर खान का जिक्र बहुत फरमाते थे, और एक दिन एक किस्सा सुना रहे थे, कुछ वेपन्स की बात हो रही थी, तो कहने लगे कि गन में जो स्ट्राइकर होता है उसको हार्डन किया होता है, और उसकी हार्डनिंग, केस हार्डनिंग इस तरीके से की जाती है, वो मेथड जिक्र कर रहे थे। तो उसी सिलसिले में फरमाया कि वो एक किसी साहब के पास 12 बोर गन होगी, रेमिंगटन की, उसमें स्ट्राइकर में एंड पर बहुत छोटा सा बॉल बना होता है, पिन होती, पिन के सिरे पर एक बहुत छोटा बॉल होता है जो हिट करता है कार्ट्रिज के ऊपर, उसके हिट करने के नतीजे में वहाँ एक्सप्लोजन होता है और उसके जो छर्रे हैं वो बैरल में से बाहर निकल के चारों तरफ फैल जाते हैं। वो पिन टूट गई थी स्ट्राइकर की, इन्होंने उससे वो अंडरटेक कर लिया जॉब कि मैं बना दूंगा, तो इन्होंने उसको बनाया और उसकी केस हार्डनिंग करके तो फिट कर दिया, वो चलता रहा। तो यूं उससे अंदाजा हुआ हमें कि लोहार का काम भी करते रहे। इसी तरह एक दिन बात हो रही थी कि जो जिक्र अजकार का टाइम है उसमें कि राइट ऑन डॉट जिक्र शुरू कर दिया जाए जो मुर्शिद ने कहा है। वो हमारा अपना एक अंदाज है जिंदगी गुजारने का, हम तो ये कहते हैं कि चलो असर की नमाज अगर तहज्जुद के वक्त पढ़ ली जाए तो क्या हर्ज है, पढ़ तो ली हमने, तो अगर कोई हमें कह भी दे गलती से तो भाई असर की नमाज असर के वक्त पर पढ़ा करो, तो अगले दिन मैं फिर वहां पहुंच जाया करता हूँ, क्योंकि हजूर कल आपने फरमाया था कि मैं असर की नमाज असर के वक्त पढ़ लिया करूँ। असल में मसला ये होता है वो टाइम होता मेरे सोने का, तो उसमें बड़ा हर्ज होता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं फजर की नमाज ईशा के टाइम पे पढ़ लूँ और ईशा की नमाज मैं जोहर के टाइम पे अदा कर लूँ, तो मैं वहाँ चेंज करवाने पहुँच जाऊँगा। फरमाने लगे कि मुर्शिद साहब ने मुझे हुक्म दिया था कि रात 11 बजे ये जिक्र तुमने शुरू करना है। कहने लगे कि अब वो लोग आ जाते थे मिलने, मैं तंग होता था, 11 बजे मैं जिक्र नहीं कर पाता था, तो मैंने उसका एक हल ढूंढा कि गुजर खान में उन दिनों एक ही सिनेमा होता था और वहाँ वो कोई फिल्म का नाम लिया जो मेरे जहन से उतर गया है, फलां फिल्म चल रही थी वहाँ पे, तो मैंने देख लिया कि इसका ये सीन जो है वो 10:45 बजे दिखाते हैं वहाँ, तो मैं रोजाना शाम को लोगों से बचने के लिए फिल्म का टिकट खरीदता था और सिनेमा में जा बैठता था। वो सीन जब आता था तो मुझे पता चल जाता था कि 10:45 हो गए, तो मैं वहां से उठता था, घर आ जाता था, 10 मिनट का मेरा वॉक थी घर तक की, अगले 5 मिनट में वजू ताजा करता था मैं और ठीक 11 बजे मैं खड़ा हो जाता था जानवाज में। तो यूं मैं लोगों से भी बचा रहा और वक्त की पाबंदी भी हो गई मेरी। तो वो इस तरह की बातों से उनके बारे में जो कुछ मुझे पता चल सका, वो जिस दिन बहुत बीमार हुए रात को और तबीयत खराब थी, फरमाया कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया मैं जा रहा हूँ, तबीयत बहुत खराब थी उस हालत में पहली बार उन्होंने डिस्क्लोज किया कि मैंने शादी की थी मैंने और मेरा एक बेटा पैदा हुआ था जिसके पैदाइश के कुछ दिनों के बाद ही उसकी डेथ हो गई थी उस बच्चे की। तो फरमाने लगे अच्छा हुआ मर गया, वरना बड़ा हो के उन्होंने तो अजीब सा लफ्ज इस्तेमाल किया जो मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता, बहरहाल मेरे मुर्शिद के बेटे थे वो, कि वो निकलता। तो उसके कुछ अरसे के बाद मेरी अहलिया का भी इंतकाल हो गया, तो अल्लाह के हर काम में मसलियत है, अगर वो जिंदा रहती तो शायद मैं इस मकाम को ना पहुंच सकता। तो यूं पता चला कि आपकी शादी हुई थी। इस तरह से मुख्तलिफ जिक्र करते रहे बड़े शाह साहब, तो वही इंफॉर्मेशन मुझ तक आई, लेकिन मैं अज खुद उनसे कोई सवाल नहीं कर सका। उम्र का अंदाजा मुझे यूं हो गया कि आखिरी दिन थे शाह साहब की जिंदगी के, तो इरादा ये हुआ कि उम्रे पर चला जाया जाए, तो मैंने कहा कि हजूर उम्रे पे चलेंगे, चलते हैं इकट्ठे, दोनों उम्रा करते हैं। कहेंगे हाँ चलो। तो मैं फॉर्म ले आया, उनके पासपोर्ट के लिए तस्वीरें वगैरह खिंचवाई, तो फॉर्म को मैंने भरा। अब वो उम्र का मसला था, अब अपने मुर्शद से सवाल कैसे किया जाए। बाकी तो जितने दर्जात थे वो कोई मसला नहीं था मेरे लिए, वो मैंने अज खुद ही कर लिया। उसमें सिर्फ दो जगहों पे जाके मैं फंस गया, वल्दियत और उम्र। अब वल्दियत की हद तक तो सवाल किया जा सकता है, तो मैंने कहा कि हजूर ये मैं सवाल इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे ये फॉर्म में लिखना है, तो अगर आप मुनासिब समझें तो फरमा दीजिए। वाली साहब का नाम बता दिया उन्होंने। तो अब उम्र के लिए गुस्ताखी थी, मैं क्या करता अपने मुर्शिद से, मैं उम्र कैसे पूछूं। तो मेरा ख्याल है खुद ही भांप गए कि मैं किस मुश्किल में हूं इस वक्त। कहने लगे तारीख पैदाइश पूछना चाह रहे हो? जनाब वो तो याद नहीं है, लेकिन उम्र मुझे याद है, तुम 62 साल लिख दो। उसके चंद दिन के बाद डेथ हो गई फिर। तो यूं उम्र का अंदाजा हो गया था, लेकिन सवाल नहीं किया जा सका कुछ अपने मुर्शिद साहब से। इल्म से भी मैं यूं ही बेबहरा रह गया कि कभी सवाल पूछ नहीं सका मैं मुर्शिद साहब से। हिम्मत ही नहीं हुई कभी कि अपने मुर्शिद साहब से सवाल पूछा जाए। तो वो अज खुद फरमा देते थे, जो खुद फरमाया वो एक दिन गया मैं सुबह ऑफिस जाने से पहले, खा 5 मिनट के लिए जाऊं, लेकिन मैं अपने मुर्शिद साहब के पास जाता जरूर था, उनके हुजरे में बैठ के एक कप चाय पी के तो फिर ऑफिस के लिए निकलता था। तो उस दिन देखा तो तबीयत खराब थी और मैं फौरन खटका कि रात मुझसे कोई कोताही हुई है, ये जो इतना मूड खराब है एक ही वजह से हो सकेगा कि रात मैंने यहां से जाने के बाद घर पर बैठे हुए कुछ हरकत की, गलती हुई, कोताही हुई है और वो बिगड़े हुए हैं। बिगड़ते ऐसे ही थे फिर। तो मैं चाहता था कि किसी तरह गरज बरस लें और इनका गुबार निकले और मुझे भी पता लग जाए कोताही क्या हुई मुझसे, ताकि आइंदा के लिए मोहतात हो जाऊं। तो मैंने बड़े तरीके से उन्हें छेड़ा। तो मैंने कहा हजूर क्या तबीयत आपकी कुछ नासाज लगती, खैरियत है, क्या हुआ? तो मेरा ख्याल था कि जवाब में बहुत शदीद किस्म की डांट आएगी, तो खिलाफ तवक्को बात धीमे लहजे में कहने लगे कि हाँ रात मेरी ड्यूटी तुर्की के करीब समुंदर की तह में थी और समुंदर की तह से जलजला बरामद होना था, तो मैं वहां समुंदर की तह में ड्यूटी पे था। तमाम जलजला मेरी आंखों के सामने बरामद हुआ जमीन से, उसकी वजह से बहुत चक्कर आ रहे हैं मुझे, कह की सी कैफियत है, वो नौजिया हो रहा होगा। तो कहने कह की सी कैफियत है? तो मैंने कहा समुद्र की तह से जलजला? हाँ, उसकी शिद्दत इतनी है और ये 5 दिन के बाद जापान में फला जगह पर आएगा ये जलजला। सच्ची बात यह है कि वो जो मगरबी तालीम है और अंग्रेज की ट्रेनिंग है वो हर हर जगह आड़े आती है। तो मैं ये दिल में मैंने सोचा कि पता नहीं किस लहर में है, किस मौज में है, फरमा रहे हैं ठीक है। तो बात वो खत्म हो गई। हैरत तो ये हुई कि छठे दिन अखबार में उस जलजले का जिक्र था, शिद्दत एग्जैक्टली वो थी जो फरमाई थी, जापान ही में आया और उसका ओरिजिन तुर्की के करीब बताया गया था। तो इस तरह अगर कुछ वो खुद बयान कर देते थे तो पता चल जाता था, लेकिन सवाल नहीं किया इसी वजह से। बड़े शाह साहब के बारे में मेरे पास कोई मालूमात नहीं है, अलबत्ता मैंने उनकी आदत और उनकी رہن سہن کو بڑے غور سے اسٹڈی کیا، اس لیے کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مرشد اس علم کو نہ تو کسی انجیکشن کے ذریعے سے منتقل کرتا ہے، نہ وہ فارمل طریقے کی کوئی کلاسز ہولڈ کرتا ہے، نہ وہ لیکچرز آپ کو پلاتا ہے کہ یہ علم آپ کو دے دیا جائے. یہ علم تو مرشد کے قریب رہتے ہوئے، ان کے اس میگنیٹک فیلڈ کے رینج میں رہتے ہوئے، تھرو آبزرویشن سیکھنا پڑتا ہے. کہ بہت گہرائی کے ساتھ اپنے مرشد کو آبزرو کرتے ہیں، ان کے طور طریقے، عادات و اطوار، ان کا رہن سہن، ان کے گفتگو کا طریقہ، یہ سب آبزرو کیا جاتا ہے اور اسے نقل کر لیا جاتا ہے. تو آسان لفظوں میں یہ ہے کہ آپ زندگی کے ہر ہر پہلو اور زندگی کی ہر ڈائمینشن میں اپنے مرشد کے فٹ پرنٹس کو فالو کرتے ہیں. اگر ہم اپنے مرشد کے فٹ پرنٹس کو فالو کرتے ہیں تو لا محالہ وہیں جا پہنچیں گے جہاں مرشد گیا ہے. یہی انسان کا آبجیکٹو ہوتا ہے زندگی کا. تو جب آپ انہی راہوں سے گزریں گے اور اسی جگہ کو پہنچیں گے جہاں مرشد گیا ہے، تو علم بھی وہی ہوگا آپ کے پاس. تو یوں علم کا حصول ہو جاتا ہے. تو میرے پاس بڑے شاہ صاحب کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات نہیں ہے. جب سے میں ان کے پاس جانا شروع ہوا تھا، میں نے انہیں لاہور سنت نگر کی گلیوں میں سے ایک گلی میں ایک مکان کے تقریباً 3.5 فٹ بائی 5 فٹ کے کمرے میں رہتے دیکھا. وہ در حقیقت اس مکان کا کہیں باتھ روم ہوتا ہوگا جسے مالک مکان نے پیسوں کی لالچ میں کنورٹ کر دیا تھا حجرے میں. 20 روپے مہینہ اس کا کرایہ لیتا تھا مالک مکان ان سے. وہی 3.5 فٹ بائی 5 فٹ کی جگہ جو تھی، وہی مرشد صاحب کا ڈرائنگ روم تھا، وہی ٹی وی لاؤنج تھا، وہی بیڈ روم تھا، وہی کچن تھا. وہیں پہ ہم بیٹھتے تھے. تو ہوتا یہ تھا کہ اس لمبائی کے جو 5 فٹ تھی، تو اس کے ایک کونے میں اس سائڈ پر جس سائڈ پر مرشد صاحب بیٹھتے تھے چڑھائی کی جگہ پہ، وہ کونا میرے لیے مخصوص تھا. میرے برابر دو صاحبان اور بیٹھتے تھے تو کمرہ بھر جاتا تھا. تو جو اس کی ڈیپتھ تھی، اس کی ڈیپتھ والی سائڈ جو تھی، جو 3.5 فٹ کی تھی، وہاں بڑے شاہ صاحب تشریف رکھتے تھے اور ان کے برابر ایک گول ہیٹر الیکٹرک کا پڑا رہتا تھا جس پہ کھانا پکتا تھا اور چائے پکتی تھی. اور بڑے شاہ صاحب کی اپوزٹ سائڈ پر جو 3.5 فٹ کی وال تھی، وہاں دو آدمی تنگ ہو کے بیٹھ جایا کرتے تھے. تو یوں 5 وزٹر اس 3.5 فٹ بائی 5 فٹ کی جگہ پر بیٹھتے تھے. تو وہیں پہ سب کے لیے چائے بنتی تھی، وہیں سرو ہو جاتی تھی. لیکن شاہ صاحب صفائی پسند بہت تھے، تو اپنے کمرے میں صفائی رکھنے کے لیے آپ نے کیا ہوا یہ تھا کہ روئی کا گدا اور اس کے اوپر ایک دری بٹھا کے، پھر پلاسٹک کافی موٹا تھک پلاسٹک وہ بٹھایا ہوا تھا فرش پہ، اسی پہ سب بیٹھتے تھے ہم. اس کا فائدہ یہ تھا کہ اگر کوئی چیز گر بھی گئی تو گیلا کپڑا لے کے اس کی صفائی ہو جاتی تھی، وہ ہر وقت چمکتا رہتا تھا صاف بالکل. برتن رکھنے کے لیے شاہ صاحب نے دیوار میں سے ایک ایک اینٹ نکال کے تو شیلفیں بنا لی تھیں، اس میں برتن پڑے رہتے تھے. यूं मैंने जिंदगी गुजारते देखा शासक को। अलबत्ता एक चीज में बड़ा पर्टिकुलर देखा मैंने, हर यकम को विदाउट फेल किराया अदा हो जाएगा, बिजली का बिल बड़ा रिलीजियसली ड्यू डेट से पहले पे करेंगे, ये उनको मैंने बड़ा मोहतात देखा इस काम में कि किसी का बिल ड्यू न रह जाए। पहनावे में मैंने उन्हें, उसकी वजह आज मुझे समझ आती है कि वो एक हल्का सा उसको बहुत ही यूं समझ लीजिए एक हल्की सी टिंज मस्टर्ड कलर की अगर व्हाइट कपड़े में शामिल कर दी जाए, क्रीम का जो लाइटेस्ट शेड हो सकता है उस रंग का शलवार कमीज और कंधे पे सिलसिला वारसिया का जो रुमाल है बड़ा वो पड़ा रहता था और पांव में प्लास्टिक की चप्पल, ये पहनावा था। इससे ज्यादा मैं शायद कुछ अर्ज नहीं कर सकूं।